ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षक आंदोलन के कारण 70 लाख बच्चों पर असर, छात्र नामांकन अभियान प्रभावित। आंदोलनरत शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में खाली उपकुलपति पद की जिम्मेदारी शिक्षा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ खड़ग केशी को सौंपी गई। रुकुम पश्चिम में 21,800 से अधिक घरों को केंद्रीय प्रसारण की बिजली आपूर्ति। और ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाली 2 अरब डॉलर से अधिक की संघीय फंडिंग को रोकी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने शैक्षिक सत्र 2082 के लिए नामांकन अभियान शुरू किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिक्षकों के आंदोलन के कारण नामांकन अभियान के साथ साथ नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत अनिश्चित हो गई है। नए शैक्षिक सत्र में छात्रों के नामांकन के लिए सरकार द्वारा देशभर के स्थानीय तय और स्कूलों से किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए शिक्षक महासंघ ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। महासंघ ने संसद का वार्षिक सत्र तुरंत बुलाने, विशेष सत्र आयोजित करने या अध्यादेश के माध्यम से शिक्षा आयन लाने की मांग रखी है। शैक्षिक हड़ताल सहित शिक्षकों के इस आंदोलन से 70 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाला नामांकन अभियान प्रभावित हुआ है। साथ ही एसईई की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी रोक दी गई है। नेपाल शिक्षक महासंघ की मांगों को पूरा करने के संबंध में सरकार ने कार्य शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा औपचारिक वार्ता टीम बनाकर चर्चा करने का आह्वान प्रभावी नहीं होने के बाद सरकार ने उच्च स्तरीय वार्ता करने की तैयारी की है। इसके लिए संसाधन प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के बीच आज चर्चा हुई। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, गृहमंत्री रमेश लेखक और शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराय के बीच शिक्षकों की मांगों पर चर्चा हुई। महासंघ ने आंदोलन को और मजबूत करने, शैक्षिक गतिविधियों को ठप्प करने और कक्षा 12वीं की परीक्षा में भी भाग न लेने का निर्णय लेने के बाद आज सरकार के मंत्रियों के बीच ये चर्चा हुई। महासंघ के इस निर्णय से इसी वैशाख 11 गति से शुरू होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के बीच वार्ता हुई है। सरकार के कामकाज को लेकर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से असंतोष जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री निवास बालोटार में दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति केपी शर्मा ओली ने विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ खड़ग केसी को विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर डॉ केशर जंग बराल के 28 चैत को स्वीकृत इस्तीफे के बाद की गई है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयन के तहत कुलपति ओली ने 31 चैत को अपने निर्णय में प्रोफेसर केसी को अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। ये नियुक्ति उपकुलपति पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक के लिए की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस अवधि में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। बजट की कमी के कारण कैलाली और कंचनपुर में संचालित पेयजल परियोजना सालों से ठप पड़ी हुई है। आर्थिक वर्ष 2071-72 से संचालित संघीय सशर्त अनुदान के तहत कैलाली और कंचनपुर की 90 परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इन परियोजनाओं से लगभग 2 अरब रुपए का दायित्व बन गया है। ये जानकारी पेयजल तथा स्वच्छता प्रभाग कार्यालय कैलाली ने दी। कार्यालय के अनुसार संघीय सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट आवंटित नहीं किया है, जिससे ये योजनाएं अधूरी पड़ी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सहकारी क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी और सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल के साथ हुई बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने सहकारी संस्थानों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं के छोटे बचतकर्ताओं की जमा राशि वापस दिलाने के मामले में सरकार को गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत 47 सहकारी संस्थाओं में से 23 को संकटग्रस्त घोषित करते हुए उनके समाधान के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि नेपाल सरकार का लक्ष्य देश में मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को 0 तक लाने का है। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल में मातृ एवं नवजात शिशु सिमुलेशन लैब के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में नेपाल ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मंत्री पौडेल ने बताया कि आगामी बजट में सरकार प्रसूति स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए बजट आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की सिमुलेशन लैब की प्रभावशीलता को दीर्घकालीन बनाए रखना होगा और इसे सभी प्रदेशों में विस्तारित करने की आवश्यकता है। वर्ण हार्ट वर्ल्ड वाइड के सहयोग से निर्मित इस सिमुलेशन लैब का उपयोग मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के ज्ञान और क्लिनिकल कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि प्रदेश सरकारों को भी प्राकृतिक उपचार से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे में निवेश करना चाहिए। पार्टी के हुलाकी लोकमार्ग अभियान के तहत देवझुली नगर पालिका वार्ड नंबर 16 के रजहर स्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने इस चिकित्सालय को प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल और विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने में सहयोग का आश्वासन दिया। नेपाली कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक वैशाख 17 को दोपहर 1 बजे पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित होगी। पार्टी के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने बताया कि बैठक में केन्द्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी सदस्य और आमंत्रित सदस्यों को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। बैठक में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मिथिलांचल सहित तराई मधेश के जिलों में आज जुड़ शीतल पर्व मनाया गया है। इस दिन घर के सभी बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे सदस्यों को बासी पानी अंजलि में रखकर सिर पर डालते हुए आशीर्वाद देते हैं। जुड़ शीतल पर्व प्राकृतिक और मानव के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। ये पर्व न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी शीतलता प्रदान करने का कार्य करता है। मिथिला में जुड़ शीतल पर्व को थारू समुदाय में शिरवा पर्व भी कहा जाता है। रुकुम पश्चिम के 21,855 घरों को अब केंद्रीय विद्युत प्रसारण लाइन से जोड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी 18,000 घरों तक बिजली पहुंचना बाकी है। ये जानकारी रुकुम पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र के प्रमुख बीरमान राजकोटी ने दी। प्राधिकरण द्वारा कुछ महीने पहले जिले के सभी 73 वार्डों में विद्युतीकरण का सर्वेक्षण किया गया था। चालू आर्थिक वर्ष में 2500 अतिरिक्त घरों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से ज्यादा की फेडरल फंडिंग पर रोक लगा रहा है। इस प्रतिष्ठित कॉलेज ने व्हाइट हाउस की मांगों की एक सूची को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद ये बात कही गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बयान में कहा है कि हार्वर्ड का बयान उस चिंताजनक अधिकारवादी मानसिकता को दर्शाता है जो हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में व्याप्त है। इससे पहले व्हाइट हाउस की ओर से हार्वर्ड को मांगों की एक सूची भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मांगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में यहूदी विद्रोही भावना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इन मांगों में यूनिवर्सिटी के प्रशासन, प्रवेश और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की बातें शामिल थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक आंदोलन के कारण 70 लाख बच्चों पर असर, छात्र नामांकन अभियान प्रभावित, आंदोलन रत शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में खाली उपकुलपति पद की जिम्मेदारी शिक्षा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ खड़ग केसी को सौंपी गई, रुकुम पश्चिम में 21,800 से अधिक घरों को केंद्रीय प्रसारण की बिजली आपूर्ति और ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाली $2 अरब से अधिक की संघीय फंडिंग को रोकी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।